in light of those calls and
releases?
प्रथम
आशर ने अभी जो नियुक्तियों और मुक्ति दी है, मैं सबके लिए कहना चाहता हूं कि हम हमेशा याद रखेंगे, प्रेम करेंगे उनसे जिन्होंने विश्वास से हमारे साथ सेवा किया है। जैसे हम नए आए हुए नियुक्तियों को तुरंत प्रेम से स्वागत करते हैं, हमारा हार्दिक धन्यवाद है सबको। मैं आज उधारकर्ता के नीति कथा के बारे में बुलावा, जिसमें एक गृहस्वामी सुबह निकला मजदारों को काम पर लगाने के लिए। 6 बजे सुबह को पहले दल के मजदार को लगाने के बाद वो 9 बजे, 12 बजे दिन को और 3 बजे शाम को लौटा और मजदार को ढूंढने, क्योंकि फसल इकट्ठा करने के लिए और लोगों की ज़रूरत थी। धर्मशास्त्र में लिखा है कि आखिरी बार आया जो 11 घंटे पर था। फिर 1 घंटे बाद सभी मजदार इकट्ठा हुए कि कमाई लेने के लिए। आश्चर्यजनक रूप से सभी मजदूरों ने एक जैसी कमाई पाई, अलग समय तक काम करने के। तुरंत जिन्हों पहले काम पर लगाया गया था क्रोधित हुए, कहीं इन पिछलों ने ही घंटे में काम किया, तूने हमारे बारंबार कार्य किया जिन्होंने बार बार उधरे। जब इस नीति वचन को पढ़ने पे शायद तुम और मजदूर भी ने सोचा होगा कि वैसली हुआ है, मुझे इस बारे में बोलना दो। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि किसी से भी बेइंसाफी से नहीं की गई। प्रथम मजदूर ने उस दिन का तलब पर मजूरी दी थी और हासिल किया, और वो मैं सोचता हूँ बहुत आभारी रहे होगी नौकरी पर कर। उधारकर्ता के समय में एक आम आदमी और उनके परिवार सिर्फ उतने पर जितना वे उस दिन कमाते थे। अगर तुम काम ये खेती या मछली पकड़ने ये नहीं जानते तो तुम कुछ कहते नहीं। कम से ज्यादा कम ढूंढने वाले के लिए ये पहले चुने हुए आदमी सबसे किस्मत वाले थे, उस सुबह के मजदूरों में थे। हाँ, अगर कोई दया दिखाए हो तो उसके दिखा जिन आदमियों को नहीं चुना गया था। पर दिन के अंत में गृहस्वामी लौटा पहुंची बार की 11 घंटे का प्रस्तुति लेकर। ये आखिरी और सबसे निराश मजदूर सुनकर उनको सिर्फ इंसाफ की कमाई मिलेगा। कम काम को स्वीकार कर लिया तलब जानने बगैर, जानते हुए कि कुछ नहीं से कुछ हासिल होना बेहतर है जो अब तक उन्हें मिला। फिर जब वो तालाब के लिए इकट्ठा हुए, उन्होंने आश्चर्य होता सभी को बारंबार पैसा पाकर। कितने आश्चर्यचकित वो हुए होंगे और कितने आभारी। यकीनन उन्हें अपनी मजदूरी के दिनों में इतना दया नहीं देखी होगी। इसको ध्यान में रखकर कहानी में पहले मजदूरों के बड़बड़ाने पर ध्यान नहीं देना था। जैसे कहानी में ने उन्होंने बतलाया, मेरे दोस्तों, मैं तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। तुम सहमत थे दिन के कमाई से, इंसाफ का कमाई से। तुम काम पाने के लिए खुश थे और मैं खुश था तुम्हारे काम से। तुम्हें पूरी कमाई दे गई थी, अपना पैसे लो और आशीर्वाद से आनंदित हो। औरों के लिए वास्तव में मैं अपने पैसे से अपनी मंजिल करूंगा। फिर ये सूची वाली सवाल उनके लिए पहले ही अभी के जिन्हें सुनने की जरूरत है, तुम क्या क्यों जलन कर रहे हो क्योंकि मैंने दया करने की सोची। Because I choose to be kind. भाइयों बहनों, हमारे जीवन में वो समय आएंगे जब किसी और को ना सोचा गया आशीर्वाद मिलेगा या कोई खास सम्मान किसी को मिलेगा। मैं हमेशा विनती करता हूँ कि क्रोधित मत होइए और जलन ना महसूस करिए जब किसी को अच्छे आशीर्वाद मिलती है। हमारे आशीष कम नहीं होते हैं जब किसी और को ज्यादा मिलता है। हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं कर रहे हैं देखने के लिए कि कौन सबसे धनी या कौन सबसे सुंदर या ज्यादा आशीर्वाद पाने वाला है। वास्तव में हमारा मुकाबला पाप के खिलाफ है और जरूरी से जलन और पापों में से एक है, साथ ही साथ जलन की गलती है जो बढ़ाता रहता है। स्पष्ट रूप से हम थोड़ा तकलीफ काटते हैं जब कोई अनोखी हो जाती है, मगर जलन से हम तकलीफ काटते हैं जब हम सभी हमारे पहचानों वालों को अच्छा किस्मत होता है। भविष्य के लिए ये अच्छा प्रस्ताव नहीं है। हर बार तुम्हारे आसपास कोई खुश होता है तो तुम ना खुश हो जाते हो, वो और भी शर्मनाक होगा। जब हम चाहेंगे कि परमेश्वर इंसाफ और दया भी करता है, उन सब को देता है जो उनके आज्ञा मानता है, सब संपत्ति और अधिकार तैरेगा जैसा धर्मशास्त्र कहता है। पहला पाठ प्रभु के बच्चे से लालच, मुंह फुलाना, गुस्सा दिखलाना के लिए, ये औरों को निराश करना तुम्हें अच्छा नहीं बनाता, ना तो किसी को नीचा दिखाना तुम्हारे आत्मा सम्मान को सुंदरता है। इसलिए दयालु बनो और आभारी रहो कि परमेश्वर दयालु है, या जीने का खुशहाल तरीका है। इस कहानी से जो दूसरा बात मैं कहना चाहूंगा है वो दुख भरी गलती कुछ लोग कर सकते हैं अगर उन्हें अपना तलब त्यागना हो दिन की संपत्ति पर, क्योंकि वो दिन भर के महसूस किया समस्या के बारे में चिंतित थे। इसमें कहता तो नहीं कि किसी मजदूर ने पैसे ग्रेस्वामी के मुंह पर मारा और बिना पैसे के गुस्से में चला गया, मगर मैं सोचता हूं कि किसी ने ऐसा किया नहीं। मेरे प्यारे भाइयों, इस कहानी में जो हुआ 9 बजे या 12 बजे या 3 बजे जरूरी नहीं, जब मजदूरों की उदारता पूर्वक कमाई से तुलना की जाए। विश्वास बढ़ाने का तरीका है कि हम उस जारी रखे, कोशिश करते रहे तहकान की वो खत्म होते हैं और दिन भर की चिंता को वास्तविक या काल्पनिक आवश्यकता में घंटे थे जब अंतिम कमाई की तुलना करें। बेटे बातों और संख्यातों के बारे में ना सोचते रहे, ना अपने ना पड़ोसी के बारे में, ना मैं छोड़ दूं ये सोचते और जीवित गिरोह के बारे में। तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे पड़ोसियों के लिए जीवन का, यीशु मसीह के समाचार का मार्ग तो तिकलफ है। चाहे जो भी तुम्हारे मजदूरी की समझता रही होगी दिन भर, हम इतने अनमोल भौक और आत्मिक बल का इस्तेमाल करते हैं। बचपन की एक बेसुर धुन की याद रखे जो पियानो सीखते समय बजाए थे। ये कुछ हमारे पति पत्नी ने कहा था कि क्या था 20 वर्ष पहले कि हम उस और 20 वर्षों तक उन्हें याद दिखलाते हैं, या कोई गिरजाघर इतिहास की घटना जैसे तय होगा कि मरणशाली लोग हमेशा संघर्ष करते हैं परमेश्वर की उम्मीद की तरह बनाने के लिए। पहले ही उसमें से एक शिकायत तुमसे नहीं शुरू हुई, वो तुम्हारे द्वारा खत्म तो हो सकती है और उस करे के लिए एक महान इनाम होगा जब बिछेगा कि ठीक होगा जाए हमारे पृथ्वी के दिनों के अंत में, जो मुझे मेरे तीसरे और आखिरी विषय पर लाता है, ये नीति वचन। अन्य नीति वचन की तरह सिर्फ मजदूर का ये तालाब के भारी में नहीं है जैसे, और सब भीड़े और बकरियों की नहीं होती। ये कहानी है परमेश्वर की अच्छाई, उनके धैर्य और माफी की, और प्रभु यीशु मसीह की प्रायश्चित की। ये धनशीलती और दया की कहानी है, ये अनुरोग की कहानी है। वो इस विषय पर जोर डालता है जो मैंने कई वर्ष पहले सुना था, कि जो बात प्रभु परमेश्वर ज्यादा पसंद करता है परमेश्वर वो होना है, कि वो खुशी है दयावान होने से मिलती है, खासकर उनकी प्रति जो उनके आशा नहीं करता और अगर खुद को उसके लायक नहीं समझते। मैं नहीं जानता कौन इस बड़े श्रोतागण में आज मैफी की संदेश सुनना चाहेंगे जो इस नीति वचन में है, मगर चाहे तुम खुद सोचो तुम्हें देर कर दे, चाहे तुम सोचते हो कि मौके चुक गए हैं, चाहे जितनी भारी गलतियां तुम करते हो, ये कितने गुण तुम्हारे नहीं है, या घर और परिवार और परमेश्वर से कितनी दूर हो, तुम महसूस करते हो तुम चल लिए हो, मैं गवाही देता हूं कि तुम दिव्य प्यार के पार नहीं गए। तुम्हारे लिए नमकीन नहीं है कि तुम मसीह के प्रायश्चित के अनंत रोशनी के पास पहुंच से नीचे चुक पाओगे। चाहे तुम अभी हमारे धर्म के नहीं हो या हमारे साथ कभी थे और अब नहीं हो, ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें कर दिया है जैसे बदला नहीं जो सकता। कोई भी समस्या नहीं है जैसे तुम निकल नहीं सकते। कोई ऐसा सपना नहीं है जो समय और अनंतता को बीते समय तुम सच नहीं कर सकते। चाहे तुम 11वें घंटे के आखिरी और गायब मजदूर हो, पीछे का प्रभु या घंटे खड़ा है। आओ अनुरोग के सिंहासन में और इज़राइल के पवित्र पुत्र के पैरों पर गिर जाओ और भोज करो बिन रुपये और बिना धन के प्रभु के मेज में। मैं खास करके पतियों और पिताओं से निवेदन करता हूँ, पुरोहित रखने वाले या पुरोहिती पाने वालों हो, कि जैसे लेही ने कहा, जागो और धूल में से उठो और आदमी बनो। हमेशा नहीं पर अक्सर वो आदमी होता है कि बुलावा को सामने की नहीं चुनता। आओ पढ़ावाई संभालो। महिलाओं और बच्चों अक्सर ज्यादा इच्छा पूर्वक होते हैं। भाइयों बेहतर करो, अपने लिए करो, उनके लिए करो जो तुमसे प्रेम करते हैं, और प्रार्थना कर रखो और कुछ करोगे प्रभु यीशु मसीह के लिए करो, जिसने सामने लायक धम चुकाया और विश्वासियों के लिए वो चाहता था तुम्हें मिले। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जिन्हें सुसमाचार द्वारा हर वचनों से आशीर्वाद मिला है, क्योंकि वो तुम्हारे सौभाग्य है उस जल्द पाना जो सुसमाचार तक धीरे धीरे आए हैं, और तुम में से जो सदस्य है जो नहीं जो शायद अभी भी हिचक रहे हैं, शामिल नहीं हुए, तुम में से है एक हो और सभी हो। मैं गवाही देता हूँ परमेश्वर की प्रेम की बदलने वाली शक्ति की और उसके अनुग्रह के चमत्कार की। वो उस विश्वास की परवाह करता है और तुम्हें हासिल करेगा। दिन के उस समय का इंतजार नहीं जब तुम्हें विश्वास हासिल किया। इसलिए अगर तुम वादा किया है उन्हें निभाओ, अगर तुम वादा नहीं किया उन्हें बनाओ, अगर तुमने बनाया है तोड़ो दिया है, पश्चाताप करो और उन्हें ठीक करो। कभी देर नहीं होता है जब तुम बिखरे का स्वामी कहता है कि कृपया आप सभी पवित्र आत्मा को फुसफुसाहट को सुनो, इसमें कि तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के प्राश्चित वाले उस उपहार का स्वीकार करना है, उनके मजदूरी के साथ का आनंद लेने है। टालना मत, देर हो रहा है। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।